سلام الله عليكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. میں چاہوں گا کہ چند جملے سید کائنات کی خطبے کے جو حمد و ثنا کے ہیں اس کو جو ہے تلاوت اور قرائت کرنے اور سننے کا جو فیض و شرف ہے وہ ہم پالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعمہ ولہ الشکر علی ما الہمہ. والثناء بما قدم من والثناء بما قدم من أموم نعم ابتدعها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تعويلها. وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن أبتعثه. والصلاة والسلام عليها وعلى إطرتها، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. نعزي مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف، في يوم وأيام استشهاد جدته سيدة نساء العالمين. اللهم لعن من ظلمها وقتلها لعنة أبد العابدين. عزاداران سیدہ کائنات، پہلے جو ایک مجلس کا شرف ہم اور آپ کو نصیب ہوا تھا تو اس میں ہم نے کائنات کی سیدہ کے حیات طیب و طاہرہ کے کچھ ایسے پہلو پر گفتگو کی تھی جو آپ کی سیرت طیب و طاہرہ سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے کچھ گوشے تھے. آج ہم جا رہے ہیں آپ کی حیات طیبہ کے سب سے اہم ترین اور بحران اور کرائسس سے بھرپور ترین زندگی کے ان آخری کچھ ایام کے بارے میں، اور اس کی جو تاریخی ایک تسلسل ہے اور ایک چین ہے اس کو اکبر گفتگو کرنے، جو کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہر انسان کے سامنے بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں، جس کے اندر تھوڑی سی بھی ضمیر، احساس، عقلانیت اور انسانیت موجود ہو. ہم جب تاریخی تسلسل کی بات کر رہے ہیں واقعات کو لے کر، تو زیادہ سے زیادہ ہم ان 90 یا 94 ڈیز کے واقعات کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کی رحلت سے لے کر جناب سیدہ کائنات کی شہادت کے درمیان بنتے ہیں. اور انہی ایام میں سے کچھ ایام کو آج ہم اور آپ ایام فاطمیہ اولا و ثانیہ کے نام سے ہم مناتے ہیں، پہلا عشرہ فاطمیہ اور دوسرا عشرہ فاطمیہ. یہ آغاز وہاں سے ہوتا ہے، تاریخی اعتبار سے تھوڑا سا پس منظر پہ جا کے ہم آگے بڑھیں گے، کہ ہجرت کے غالباً 11ویں جو ہجری ہے یا سال ہو چکے ہیں ہجرت کیے ہوئے، اور محرم کا مہینہ ہے مشہور روایات کے مطابق، یا بعض روایات جو اللہ کے رسول کی رحلت کو 28 سفر کے بجائے ربیع الاول میں قرار دیتی ہیں ان کو سامنے رکھیں، تو 11 جو ہے تقریباً سفر کا آخری عرصہ بنتا ہے سن 11 ہجری کا. اس وقت جو ہے یہ جو محرم کے ایام تھے یا سفر کے آخری ایام تھے سن 11 ہجری میں، رومن امپائرز کی طرف سے اسلامی ٹیریٹری کے اوپر حملے کا ایک خطرہ تھا، جس خطرے کے پیش نظر حضور پاک نے، باوجود اس کے کہ اپنے عمر مبارک طیب و طاہر کے آخری ایام تھے، ایک لشکر تشکیل دیا اور ایک جوان کمانڈر کو اس لشکر کا کمانڈ دے دیا جسے اسامہ کہتے ہیں. और उम्मत मुस्लिमा के तमाम अफराद से कहा, मर्दों से कहा कि वो इस लश्कर का हिस्सा बने, सिवाय मौलाए कायनात और चंद अफराद को छोड़कर सबसे सबके लिए ये ऑर्डर था कि वो इस लश्कर के अंदर शामिल हो जाएं। इसलिए इस लश्कर की जो तादाद बताई गई है वो 30,000 से लेकर 120,000 तक तारीख के अंदर सब्त हुई है। लेकिन इस लश्कर में बहुत से नामवर मशहूर खुद को नुमायां तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश करने वाले हमेशा अपनी मकबूलियत और शोहरत के हवाले से फिक्रमंद रहने वाले बहुत से सहाबाए कराम ने इस लश्कर में शिरकत नहीं की और बहाने करते रहे। इन बहानों का नतीजा ये बना कि ये लश्कर शहर से रवाना ही ना हो सका और अभी यही सूरत हाल चल रही थी कि ये लश्कर जाएगा कि अब जाएगा, लश्कर तैयार है, जो लोग शामिल हुए हैं वो वेपन के साथ अपने घोड़ों के साथ एक मखसूस जो छावनी है वहां पे इंतजार में है कि और लोग शामिल हो जाएं और इसको लश्कर को जो है आगे बढ़ा दिया जाए और मकाम मकसद की तरफ चला जाए। लेकिन इसी असना में 20 सफर को मशहूर तारीख के मुताबिक और आजकल जो तारीख चलती है और मुहक्किकीन ने 2 रबीउल अव्वल को भी जो है शामिल किया है, हुजूर पाक की रहलत होती है और दिन होता है पीर का दिन, सोमवार जिसको हम कहते हैं, मंडे का दिन, और वक्त होता है जोहर के करीब का। जोहर पूरी तरह हुई नहीं है लेकिन जोहर के करीब का वक्त है और अल्लाह के रसूल मौलाए कायनात की गोद में अपने सर अकदस को रखकर जाहिरी तौर पर इस जहान फानी को विदा करते हैं और आलम मलकूत की तरफ रवाना होते हैं। हुजूर पाक के की रहलत के बाद एक गम का माहौल घर के अंदर और घर से बाहर तारी होता है और गम के माहौल के कुछ लम्हों के गुजरने के बाद मौलाए कायनात मखसूस फैमिली मेंबरान के साथ, यानी जिसमें हसनैन अलैहिस्सलाम जो 7 से 8 साल की एज की शायद हो सकते हैं, और करीब तरीन कुछ लोगों के साथ मिलकर अगले मराहिल के लिए तैयारी शुरू करते हैं जो गुस्ल और फिर कफन और फिर तदफीन का मरहला है। जबकि इसी दौरान मदीना शहर के बाहर एक खास किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट होती है, ये आज तक तारीख ने वाज़े नहीं कर दिया कि उस दिन जोहर की नमाज मस्जिद नबवी में किसने पढ़ाई, क्योंकि मौलाए कायनात तो गुस्ल रसूलुल्लाह में मसरूफ थे, अल्लाह के हबीब की तजहीज व तदफीन में मसरूफ थे, तो मस्जिद नबवी में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि नमाज जमात कायम न होती हो जिसको अल्लाह के रसूल खुद लीड करते थे। तो उस दिन किसने नमाज पढ़ाई वाजे नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्या लोग गमे रहलत रसूल में इस कदर मगमूम थे, गमजदा थे कि जमात ही कायम ना हो सकी, या बात कुछ और थी? काश कि ऐसा होता कि उम्मत गमे रसूल में मगमूम थी, लोगों ने इनफरादी नमाज पढ़ी हो, जमात का ख्याल ना रहा हो, इस कदर गमदारी था। काश कि ऐसा होता, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। उसी दिन जोहर के बाद तकरीबन, जिसको हम शाम कहते हैं, मगरिब से पहले अरबी में कहते हैं बाद दोहर, जोहर के बाद शाम के करीब, जो एक बड़ा कबीला है जिसे खजरज कबीला कहते हैं, ये कबीले की बात इसलिए आएगी कि उम्मत में मुसलमान थोड़े बहुत डल गए हैं लेकिन कबीली कबाइली और ट्राइबल सोच अभी खत्म नहीं हुई है पूरी तरीके से, और अब भी वो कबीले की फख्र और मुबाहात और कबीले के मसाइल को लेकर ख्याल रखना अब भी कहें न कहें राख के नीचे ये चिंगारियां मौजूद हैं। लिहाजा खजरज कबीले की एक शाख है क्योंकि बड़ा कबीला था बनी सादा के नाम से। इतनी बारीकी में जाने की जो वजूहात है वो नामों से ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि हम क्यों इतनी तारीख की डिटेल में जा रहे हैं। खजरज कबीले की एक शाख बनी सादा असर जाहिलियत में उन्होंने मदीने के अंदर एक चबूतरा बनाया हुआ था। ये चबूतरा उनकी रोजमर्रा जो जाहिली जमाने में तनाजात और झगड़े और डीलिंग होती थी उसके लिए ये चबूतरा उन्होंने बनाया था, और यहाँ पर वो जाहिली जमाने की मीटिंगें हुआ करती थी। और क्योंकि इसके ऊपर एक साइबान सा डला हुआ था तो इसका नाम पड़ा था सकीफा। अब इतनी बारीकी की जरूरत क्यों है? इसलिए कि शाम के वक्त अल्लाह के रसूल की वफात के चंद घंटों के फौरन बाद ही इस जगह पे, जो कि इस्लाम के जहूर के बाद तमाम मीटिंगें जलसे मस्जिद नबवी में हुआ करती थीं और ये एक मतरूका जगह थी, लोग यहां पर बाज रिवायात में मिलता है कि लोग अब कचरा फेंका करते थे यहाँ पर, कोई अच्छे लोग यहाँ पे जाके बैठते नहीं थे। इस जगह में आवारा लोगों की एक आमाजगा बन चुका था, जैसे हमारे यहाँ होता है कोई जगह मतरूका होती है तो वो फिर नशियों का ठिकाना बन जाता है, फिर वो आवारा जानवरों के ठिकाने बनते हैं, लोग कचरे वहां पर फेंक देते हैं, ये नेचुरल सी बात है। इस जगह पर जो है शाम के वक्त क्या होता है कि अंसार जो कहलाते हैं मदीने वाले, उनका जो बड़ा कबीला है खजरज, अपने कबीले के बुजुर्ग को लेकर एक खुफिया मीटिंग शुरू करते हैं, जबकि इधर बेत रसूलुल्लाह में, बेत अहले बेत में रसूल पाक का जनाजा मौजूद है। चंद घंटे हुए हैं कि अल्लाह के हबीब ने दुनिया से जाहिरी तौर पर आंखें बंद की हैं। इस खुफिया और इंतहाई खुफिया मीटिंग के अंदर कबीले खजरज तय करता है कि अब क्योंकि हम अंसार हैं, हम रसूलुल्लाह को जब वो मुहाजिर बन के आए थे तो वेलकम करने वालों में से हैं, मेरे ख्याल में इस इस्लामी ममलिकत और उम्मत इस्लामी की क़यादत और लीडरशिप का अल्लाह के रसूल के बाद अगर किसी को हक पहुंचता है और हकदार वो बनता है तो हमारा कबीला है और हम अंसार में से ही होना चाहिए उसको, लिहाजा अपने उस बुजुर्ग को क्या करते हैं, खलीफा चुन लेते हैं। यानी खलीफा का मतलब क्या? अल्लाह के रसूल के बाद जानिशीन रसूल। वो बुजुर्ग भी खड़े होने के बाद कहते हैं जी अब खिलाफत को रहनी ही हमारे पास चाहिए, कोई और कबीला ना आ जाए, मुहाजरीन दावा ना कर बैठे। अभी ये इन्होंने फैसला यहाँ पर लिया होता है और अपने फैसले को एम्प्लीमेंट करने के लिए ये सोच ही रहे होते हैं कि इनमें से कुछ लोग वहां से निकलते हैं, और निकलने के बाद जो है ये खबर फैलती है। जैसे साद इब्ने उबादा है जो क्योंकि थोड़े से अलग शाख से ताल्लुक रखते थे तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी मुखालिफत शुरू कर दी, और मुखालिफत करके उस बुजुर्ग की क़यादत और खिलाफत की मुखालिफत कर दी और वहां से वो निकल गया, सकीफा से उस चबूतरे से निकल कर बाहर आ गया और गली कूचे में जो भी मिलता था मुनासिब बंदा उसे उसने ये स्टोरी बता दी कि देखें इस वक्त एक खुफिया मीटिंग हो रही है सकीफा बनी सादा में, और अंसार कुछ अंसार इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कबीले के बुजुर्ग को अपना खलीफा बना लिया है। और ये बात अबू उबैदा जर्रा, मैं बाज नामों को जानबूझ के ले रहा हूं हालांकि मेरी आदत नहीं है, अबू उबैदा जर्रा तक पहुंचती है और यहां से ये बात फैलती चली जाती है कि इनमें से बहुत से लोग जिनको खिलाफत और इख्तदार का ख्याल था या उनमें से बाज हो सकते हैं मुखलिसीन हों, उनका रुख बजाय बैत रसूल के, बजाय जनाजे रसूलुल्लाह की तरफ जाने के, सकीफ़े बनी सादा की तरफ हो जाता है। और सकीफ़े बनी सादा में पहुंचने के बाद काफी मामलात वहां पर, अब अंसार के साथ मुहाजरीन भी पहुंचते हैं, मुहाजरीन के कबाइल भी वहां पर पहुंचते हैं और मामलात काफी उनमें बहस मुबाहसे की शक्ल में चले जाते हैं और एक तरह का क्लेश पैदा हो जाता है, तनाजा खड़ा हो जाता है, काफी ले दे और तू मैं चली जाती है। और आपस की रंजिशें मुखालिफतों में भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। कोई कहता है कि इसको खलीफा बना लो तो दूसरा जो है उसके ही कबीले के अफराद मुखालिफत करते हैं क्योंकि उनकी पर्सनल इश्यूज होते हैं। काफी बड़ी तफसीरात और डिटेल को तारीख ने सब किया है और बहरहाल ये मसला यहाँ पर चल रहा होता है सकीफे बनी सादा में। और दूसरी तरफ क्या है कि मौलाए कायनात हुजूर पाक के जसद ताहिर व अतहर व मुतहर के तजहीज व तदफीन के लिए मसरूफ हैं। इसी असना में वो एक शख्स मगरिब से पहले पहले जो मदीना शहर से बाहर था, क्योंकि उनकी एक बीवी मदीना शहर से बाहर रहती थी, वो उनके घर गए हुए थे, उन्हें खबर मिलती है, सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए पहुंचते हैं और कुछ लोगों को भी हमराह करके सकीफा में बनी सादा में पहुंचते हैं। और उसके बाद वहां पर क्योंकि उनके ग्रोह के अफराद ज्यादा होते हैं और उनकी एक शोहरत पहले से मौजूद है, उनकी हुजूर पाक से के साथ एक रिश्तेदारी पहले से सबके लिए अंडरस्टूड है, लिहाजा उनका पूरा फायदा उठाते हैं। और जो वहां पर चंद अफराद बैठे हुए थे मुहाजिरों और अंसार में से, उन सबको दबा लेते हैं और तय करके इन्हीं साहब को खलीफा के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है। और उसी वक्त रात से पहले पहले अबू अबैदा कुछ सरकर्दा लोगों को लेकर मस्जिद नबवी में आ जाता है, माहौल बना लेता है और नए बनाए हुए सकीफे बनी सादा की खुफिया मीटिंग में चंद मुहाजिर और चंद अंसार की जानिब से बनाए हुए खलीफे को भी लेकर आते हैं मस्जिद में और वहां पर उस खलीफे को बेनवाने खलीफा खुतबा शुरू करवाते हैं। इस दौरान जो मुखालिफत की सबसे ऊंची आवाज मस्जिद नबवी में उठती है वो अल्लाह के रसूल के वो खास सहाबी जिनाबे अबू जर गफारी की आवाज होती है, जो वहां पर पहुंच कर कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप लोग भूल गए हुजूर पाक ने गदीर में क्या फरमाया था, आप लोग भूल चुके हो कि फला 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 मकामात पर अपने बात की खिलाफत के हवाले से क्या क्या बातें। लेकिन ये एक आवाज होती है, इस आवाज के साथ देने वाले कोई नहीं होते इल्ला ये कि तारीख ने इतना कहा है। कुछ लोग थे जो दबे दबे जुमलों में ताईद कर रहे थे, किसी ने ये जुरत नहीं की कि उसकी आवाज में आवाज मिलाकर उठ खड़े होते और वहां पर जो है उम्मत की डायरेक्शन को दुरुस्त कर लेते। यूं ये दिन जोहर से लेकर मगरिब में पहुंचता है और रात का वक्त शुरू होता है। उसी रात को कुछ खास अस्हाब जिनके नाम भी आए हैं तारीख के अंदर, वो इस सारी सूरत हाल से परेशान होकर और एहतिजाज करते हुए मौला अली अलैहि सलाम के घर में आ जाते हैं, जिनमें जो नुमाया नाम तारीख ने जिक्र किया है वो बर्रा इब्ने आदिब हैं, जिनाब मकदाद हैं, जिनाब सलमान हैं, जिनाब अबू जर हैं, जिनाब अम्मार यासिर हैं, जिनाब हुजैफा हैं, इब्नुल हैशम हैं और इबादा वगैरह जैसे कुछ अफराद शामिल हैं। ये एहतिजाज करते हुए एक तरह से मौला अली अलैहि सलाम के घर पहुंचते हैं और वो वहीं पर पड़ाव करते हैं, एक तरह से हमारी आज की जबान में वो धरना शुरू कर देते हैं वहां पर। सोमवार का दिन गुजर जाता है और अगला दिन मंगल का तुलू हो जाता है और मंगल के दिन के आगाज के साथ ही नए जबरी तौर पर खुफिया तौर पर चंद अफराद का बनाया हुआ जो खलीफा है उसकी जानिब से हुकूमती ऑर्डर आने शुरू होते हैं। और इसमें दो तयुनाती होती हैं, एक चीफ जस्टिस जो अपने बाद जिसने खलीफा बनना है उसे चीफ जस्टिस के तौर पर डिक्लेयर करते हैं काजी उल कुजात के तौर पर, और अबू उबैदा जो सारी लॉबिंग कर रहे थे मस्जिद नबवी के अंदर भी खुतबे के लिए भी, जिन्होंने खबरें भी दी थी, उनको खजानादार बनाया जाता है और कौमी खजाने की जिम्मेदारी बैतुल माल की जिम्मेदारी उसे दी जाती है। और बेअत लेने का जो तसलसल है वो गली कोचों में दाएं बाएं कन्विंस करना, लोगों को डराना धमकी देना, ये सिलसिला जारी रहता है। इत्तफाक की बात है कि शायद मदीने के लोग फौरी तौर पर इतना ज्यादा सपोर्ट मदीने के लोगों से न मिलती, लेकिन उस दौरान वहां पर एक और कबीला जो एक रेफ्यूजी कबीला था, जो खानाबदोश कबीला जिसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ भी मौजूद है आज भी, एक सहरानशीन कबीला जिसको कबीले असलम कहा जाता है, बहुत बड़ा कबीला था। ये साल में एक मरतबा सिटी का रुख करते थे और साल भर की अशियाए खुर्दनोश खरीदते थे। ये पूरा कबीला मुंह करता था। उसकी वजह यह थी कि सहरा के अंदर उन्हें डाके और चोरों से खतरा रहता था, इसलिए ये सिंगल ट्रेवल नहीं करते थे, मजबूर होते थे कि पूरा का पूरा ट्राइबल जो है, पूरा का पूरा कबीला सफर करें। तो यह सारा कबीला मदीना शहर में आया हुआ था अशियाए खुर्दनोश खरीदने के लिए। इस कबीले तक भी नए खलीफे के जो अफराद हैं वो एक्सेस करते हैं। इनको पूरे साल का खर्चा दिया जाता है, इनको बहुत कुछ नवाजा जाता है, कौमी खजाने का मुंह इनके सामने खोल दिया जाता है। सहरा नशीन लोग हैं, इनके अंदर एक किस्म की जहालत और हठधर्मी और एक तरह की जो है गुसेलापन पहले से मौजूद है, और कस्म पुरसी के शिकार लोग हैं, महरूम लोग हैं, लिहाजा इन्हें इस्तेमाल किया जाता है लोगों को डराने और धमकाने के लिए, और इनको एक अददी बरतरी के तौर पर काउंट किया जाता है कि कबीले असलम ने भी नए खलीफे की बेअत कर ली है जिनकी इतनी बड़ी तादाद है। यानी बेअत का दायरा कल शाम के वक्त शुरू हुआ और आज सुबह से राहू तक पहुंच गया, जैसे कि बाज अफराद ने तारीख के अंदर ये बात कही है कि इतनी तेजी से बेअत का सिलसिला फैला कि सहराओं तक पहुंचा। तो उसके पीछे की जो कहानी है वो इस तरह की कहानी है। यूं वक्त गुजरता गया और उसी दिन सहपहर का वक्त आ गया। अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा, क्योंकि अभी खिलाफत के मसाइल में जो मेन की पर्संस थे उस शहर के अंसार और मुहाजरीन में, वो आपस में उलझे हुए थे। अभी अंसार की ये कोशिश थी कि शायद बाजी पलटे और खिलाफत की बागें उनके हाथ में आ जाए, लिहाजा वो पहला जनाजा जो मौलाए कायनात ने ऑफिशियली तौर पर जिसकी अनाउंसमेंट की थी, उस जनाजे में वो शामिल न हो सके। मैंने ये पहले का लफ्ज इसलिए दोहराया क्योंकि जनाजा हुजूर पाक गुरोह दर गुरोह अंजाम पाया है, ये बात सही है, लेकिन कोई ऐसी अहले तशी तारीख में मुस्तनद बात नहीं है कि जो हजरत खिलाफत की बाग दौड़ में सबसे आगे नंबर पर आए हुए मौजूद थे, उन्होंने क्या जनाजे में चलो गुरोह दर गुरोह की शक्ल में भी शिरकत की है या नहीं की है। लेकिन हमारे बरादरान की किताबों में बड़े जोर और शोर के साथ मौजूद है कि हाँ जी शिरकत की थी, हाँ जी की थी, लेकिन उसकी तफसीलात मफकूद हैं या बहुत देर के बाद वो तफसीलात ऐड की गई हैं, जो जिसको हम कहते हैं सेकंड और थर्ड लेवल के जो मास्टर सोर्सेज हैं उनके अंदर जो है उन डिटेल्स को लाया है, जो फर्स्ट सोर्स हैं किताबें हैं उनके अंदर ये चीजें नहीं मिलती हैं। इस बात को लेकर भी इख्तलाफ पाया जाता है कि हुजूर पाक की तदफीन आया उसी वक्त हुई या फिर जाकर रात को हुई। हम इस इख्तलाफ को रहने देते हैं कि उसी वक्त तदफीन हुई या रात को हुई, और रुख करते हैं कि तदफीन के बाद क्या हुआ। बुध से लेकर, यानी अगर मंगल की रात को तदफीन हो चुकी हो या मंगल की सहपहर को तदफीन हो चुकी हो, बुध से लेकर जुमे तक 3 दिन उम्मत की सूरत हाल को पेश नजर रखकर कायनात के मौला और कायनात की सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाहि अलैहा निकलते हैं डोर टू डोर, मुहाजरीन और अंसार के घरों में जाते हैं, दस्तक देते हैं। तारीख लिखती है कि जब फलां बदरी जो शोहदा के खानवादे थे उनमें से किसी के दरवाजे पर दोनों हस्तियां पहुंची और दस्तक दी तो खातून ने दरवाजा खोला और हैरान हो गई कि मौला अमीरुल मोमिनीन और रसूल जादी इस वक्त उसके दरवाजे पर। हैरान भी हुई, परेशान भी हुई और अर्ज किया, आप कैसे यहां पर जहमत की, मुझे बुलाया होता। बेखुदा रसूल जादी, आप तो इस वक्त दाख दीदा हैं, आप तो इस वक्त गम के माहौल में हैं, अभी तो आपके बाबा की रहलत हुई है, आपने क्यों जहमत की? जनाब सैदाए कायनात फरमाती हैं, यानी हमारी जबान में, हमें समझने के लिए आसान जबान में ये कह सकते हैं कि फरीजे का तकाजा था कि मुझे उस तकाजे ने तुम्हारे दरवाजे तक लाया है। अल्लाह अकबर। अब देखें कायनात की सैदा एक एक के दरवाजे में जाए, कायनात के मौला एक एक के दरवाजे में जाए, और इसके पीछे वजह क्या है, सबब क्या है? दीन और इस्लाम की बका है, खुदा और पयाम खुदाबंदी की बका है, रसूल और पयाम रसूल की बका है। इसके लिए एक एक के दरवाजे पर जाते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो इलाही और दीनी कयादत से इनहराफ ना करें। तारीख ने ये जुमले सब किए हैं कि ज्यादातर लोगों का जो जवाब था, और बाद में मौला अली के खुतबे भी ये बयान करते हैं, ज्यादातर जो लोगों का जवाब था वो कहते थे या बिनते रसूलिल्लाह, ए रसूल जाती, कत मजत बेअतुना लिहाजर रजुल, हमारी जो बेअत का मसला था तो वो इस मर्द के साथ, इस बंदे के साथ हमारी बेअत हो चुकी है। वलो अन्ना ज़ौजुकी व इब्नु अम्मिकी सबक इलैना फलाना मा अदलना बिही, खुदा की कसम अगर आपके चचाजात और ये आपके शोहर उससे पहले हमारे पास आ जाते, हम कभी भी इस बंदे के हाथ में तो बेइज्जत नहीं करते, लेकिन अब हमने कर दिया है तो वापस उससे जो है लौटना हमारे लिए मुश्किल काम है। अल्लाह, तारीख कहती है कि ये डोर टू डोर जाकर इमामत और विलायत के निजाम के लिए कंपेन चलाने का अमल कायनात की सैयदा और कायनात के मौला और उसके बाद सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अल मुश्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी दूसरी मरतबा भी दोहराया गया है। जब दूसरी मरतबा गए तो हसनैन अलैहिस्सलाम भी साथ थे। हैरत अंगेज बात है कि कैसे मुमकिन है। चले सिरे कायनात के हवाले से बास चीजें सुनी है, देखी न हो, लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तो मनाजिर देखे हैं मस्जिद नबवी के अंदर। मैंने कई बार इसको नकल किया है, मैं बार बार नकल करूंगा। क्या जो है हुजूर पाक जब नमाज पढ़ा रहे होते थे तो इन दो नवासों को पुश्त रसूलुल्लाह पर नहीं देखा था, सजदे के तूलानियत को नहीं देखी थी? यकीनन देखा था सबने। हुजूर पाक खुतबा दे रहे हैं और ये आदाब वो रसूल जो कि अदब से अपने जूतों का भी नाम रखते हैं उसे जूता कह के नहीं बुलाते, वो रसूल देखें जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं तो आप अपने खुतबे को रोकते हैं, आपकी अपनी जो रविश है और तरीके कार है उससे बिल्कुल उलट मेंबर से उतरते हैं। एक शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाते हैं तो उसे आवाज देते हैं दाऊ इब्नी आदा, कह रहे मेरे बेटे को रहने दो मैं खुद ही उठाऊंगा, और उठाते हैं लेके आते हैं, खुतबे को रोका हुआ है, उम्मत देख रही है, मेंबर पे लेके आते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं, सीने के बटन खोलते हैं और सीने से लेकर गले तक चूमते हैं, फिर बटन को बंद करते हैं और खुतबे को कंटिन्यू करते हैं। ये तो लोगों ने देखा था कम से कम। अब यहां पर ये जुमले कहे जाते हैं जैसे कि दो दावतें आई हों। खुद मौला अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं नासिर बलागा में, फलम अदा अहदन मिन अहली बद्रिन व अहली साबिका मिन अल मुहाजिरीन वल अंसार इल्ला नशतुहुम अल्लाह। अल्लाह अकबर। करे कि हमने बद्रो ओहद और मुहाजिरीन अंसार में से किसी भी ऐसे अफराद को नहीं छोड़ा मगर ये कि खुदा के लिए, खुदा के रास्ते में नाशतुहुमुल्लाह, फरियाद की हमने, हलमिन कहा हमने, इस्तगासा बुलंद किया उनके सामने, नाशतहुमुल्लाहु फी हक्की वदअउतुहुम इला नुसरती, हमने कहा आओ हमारी मदद करो, उम्मत को गलत रास्ते पे डाला जा रहा है। फलम यस्तजिब अली, किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मेरे मुझे जवाब नहीं दिया, मिन जमी इन्नास, किसी ने भी मुस्बित जवाब नहीं दिया, इल्ला अरबातुन, सिर्फ चार लोग थे, चार लोग। तारीख कहती है कि जब दूसरी दफा कायनात की सैदा और मौला अली अलैहि सलाम एक एक के घर में गए तो 40 अफराद ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ठीक है हम तैयार हैं आपके साथ देने के लिए, आपकी बातें सही हैं, गदीर का मसला बिल्कुल सही है, आप ही वलीउल्लाह हैं, आप ही जानिशीन रसूल हैं, बिल्कुल सही है, उम्मत बिगड़ जाएगी। आप बताएं हमें करना क्या है। मौला फरमाते हैं कि कल सुबह फला जगह पे आ जाना सारे के सारे इकट्ठे होकर, हम वहां पर बेयत करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप को ले लेंगे। यानी मौला एक मूवमेंट चलाने का सोच रहे हैं। मौला यानी चाहते हैं कि बातिल जो ताकत जिसने कब्जा किया है मनसब इलाहिया और मनसब रसूल इस्लाम के ऊपर, उसे जो है अवामी मूवमेंट की शक्ल में, अक्सरियत की मूवमेंट की शक्ल में, एक अवामी हमायत की शक्ल में उसको सही रास्ते पर ले आए। अगले दिन सुबह जब मौला अली अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचते हैं तो सिवाय इन चार अस्हाब के कोई भी वहां पर मौजूद नहीं होता है। और मौला उन चार के नाम लेकर फरमाते हैं, फलम यस्तजिब अली मिन जमी इन्नास इल्ला अरबातुन सलमान अबू जर व मिकदाद व जुबेर वलम यकुन माई अहदुन मिन अहले बैती उसीरु बिही वला अख्वा बिही, कोई भी नहीं आया मेरे अहले बैत और इन चार अफराद के अलावा। इंशाल्लाह हम अगली मजालिस में डिस्कस करेंगे कि जनाब सय्यदा ने इसकी वजह खुतबे में क्या बयान फरमाया कि क्यों नहीं आए लोग, उसकी वजूहात क्या है, कौन सा मसला था ऐसा कि अभी रसूल ग्रामी इस्लाम कुछ दिन नहीं गुजरे हैं, जनाजा पड़ा हुआ है और यहां पर जो है सारा मसला ही गलत ट्रैक पर चला गया है। एक और जगह पर मौलाए कायनात फरमाता है, अमा वल्लाहि मा अलूम नफ्सी फी जहादिकुम वला कुंतु इस्तकमंतु मिन अल अरबईन रजुलन लफरहतु जमाअतकुम। मैंने क्यों कहा कि एक मूवमेंट चलाना चाहते थे, दूसरे अल्फाज में बातिल का तख्ता उलटना चाहते थे। खुद फरमाते हैं, खुदा की कसम मैं तुम्हारे साथ लड़ने से घबराता नहीं हूं, अगर मेरे पास 40 मददगार उस वक्त होते, सिर्फ 40, लश्कर उसामा में कितने गए थे, 30,000 से 1,20,000, 40 अफराद अगर मेरे साथ होते तो मैं अपना हक तुमसे लेकर ही रहता, लेकिन खुदा लानत करे उस कौम पर जिन्होंने पहले मेरे साथ बेइज्जती की और फिर बाद में मेरी मुखालिफत शुरू कर दी। जब ये सूरत हाल बनती है कि दो दफा दरवाजों में गए हैं, एक एक का दरवाजा खटखटाया है, अल्लाह के रसूल की सीरत पर अमल करते हुए मेहरबान रहमदिल मुशफिक बाप की तरह मौलाए कायनात और सईदे कायनात गए हैं कि तुम लोग गलत रास्ते पे मत जाओ, बिगड़ मत जाओ, जहन्नम के रास्ते अख्तियार ना करो। जब किसी ने जवाब नहीं दिया, बाब मदीनतुल इल्म, उसके बाद कुरान की जमावरी में लग जाते हैं। कुरान की जमावरी से मुराद क्या है, क्या कोई अलग कुरान था, नहीं यही कुरान था, फर्क क्या था फिर। जिस कुरान को मौलाए कायनात जमा कर रहे थे था वो यही कुरान, लेकिन इसकी तरतीब और साथ में आयतों की तफसीर, जो हुजूर पाक शान नुज़ूल, जो हुजूर पाक ने बयान फरमाया था, जिसे उस वक्त लिखा गया था, उसको जो है मौलाए कायनात ने इकट्ठा किया, जिसमें तफसीर भी मौजूद थी और तरतीब भी उसी तरह थी जिस तरह जो है हुजूर पाक ने बयान फरमाई थी। शेख कुलेनी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हफ्ते या सनीचर के दिन, यानी रसूलुल्लाह की रहलत के तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर, बाद में 6 दिन के अंदर मौलाए कायनात ने कुरान को इकट्ठा किया और सबके सामने पेश किया, पूरे शहर के सामने, और बेशुमूल जो जाबिर और काबिज और जबरी हुकूमत के हुक्मरान थे, मस्जिद नबवी में आप तशरीफ ले आए, कुरान मजीद के नुस्खे को अपने साथ लेकर आए और फरमाया कि देखो ये कुरान है, मैंने उसी तरतीब और तफसीर के साथ इकट्ठा किया है जिसे अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया था। लेकिन नए हुक्मरानों ने न सिर्फ इस कुरान मजीद को लेने से इनकार कर दिया, बल्कि जो है इस कुरान को लेकर एतराजात शुरू कर दिए जब बात तफसीर की आ गई। अल्लाह अकबर, बाब मदीनतुल इल्म, मौलाए कायनात फातह बद्र व हुनैन उस कुरान मजीद के नुस्खे को लेकर घर चले गए। बाद में कहा जाता है कि उसके 2 या 3 नुस्खे बनाए मौलाए कायनात ने और मुख्तलिफ जगहों में भेज दिए। इस वाकये के बाद, यानी आप पता चला कि तसलसल में 6 या 7 दिन के बाद जो है मौलाए कायनात ने कुरान को जमा किया, और इस वाकये के बाद पहली बार इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेइते शरीफ में नई हुकूमत के कारंदे आ जाते हैं और दस्तक देकर कहते हैं कि आपको भी मस्जिद में आना होगा और नए हुक्मरान के हाथों में बेयत करनी होगी। तलब बेयत कहा जाता है। यह तलब बेयत सिर्फ कर्बला तक महदूद नहीं है, ये तलब बेयत बकिया इमाम नहीं, हर इमाम के दौर में यह मसला रहा और हर इमाम ने इस बेयत को ठुकराया है, तलब बेयत करने के लिए आए। बाज रिवायात में मिलता है कि जब तलब बेयत के लिए अफराद घर के अंदर आए तो सहन में सलमान और अबू जर ये भी वगैरह भी वहां पर बैठे हुए थे और काफी यहाँ पर जो है तू मैं हो गई और बात जो है कशीदगी की तरफ चली गई। और उसके बाद मौला अली अलैहि सलाम ने इन अस्हाब बावफा से गुजारिश की कि वो आपके घर के सहन को छोड़ दें और अपने अपने घरों को चले जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि उनकी मौजूदगी को बहाना बनाकर मौला के घर पर हमला किया जाए और चादर और चारदीवारी को पामाल किया जाए और सैदे कायनात जैसी हस्ती और रसूल जादी वहां पर मौजूद हैं, खुदा न करदा जो है उनकी शान अकदस में किसी किस्म की कोई गुस्ताखी ना हो जाए। इस वाकये के बाद अब जाकर वो लश्कर उसामा रवाना कर दिया जाता है। नए खलीफे का जो दूसरा ऑर्डर आता है वो लश्कर उसामा को रवाना करना है और ताकत के जरिए से ज्यादातर मर्दों को इस लश्कर में भेज दिया जाता है और शहर ज्यादातर मर्द हजरात से खाली हो जाता है और लश्कर उसामा में जो लोग जाते हैं उनके घरों में उसके बाद बैतुल माल के मुंह खोलकर तोहफे और तहाइफ की तकसीम शुरू हो जाती है और बेअत की खरीदारी शुरू होती है मुजाहिदीन की फैमिलीज की इमदाद के नाम पर आज की टर्मिनोलॉजी में। और ये वही वक्त होता है कि जिस वक्त हुकूमत जो है मुख्तलिफ जो माली सोर्सेज हैं उस पर कब्जे शुरू करती है और इसी दौरान बाग फिदक समेत अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबिस्ता बहुत सारे जो माली सोर्सेज थे उस पर कब्जा किया जाता है। जब मदीना शहर में मर्द नहीं है, मर्दों की अक्सरियत मौजूद नहीं, अक्सरियत गालिब मौजूद नहीं है, तो उस वक़्त अहले बैत अलैहिस्सलाम के माली सोर्सेज पर डाका जनी शुरू होती है। ये माली सोर्सेज क्या थे? सिर्फ बाग फिदक था? जी नहीं, सिर्फ बाग फिदक नहीं है, अलखुम्सु वमा फीही, यानी कुछ वो इलाके जो खुम्स में हुजूर पाक, क्योंकि खुम्स का एक हिस्सा हुजूर पाक से बराह रास्त, अगरचि पूरा का पूरा खुम्स ताल्लुक रखता है मासूम से, माल इमाम और माल सादात दोनों ताल्लुक रखते हैं, तो खुम्स व माफी ही के नाम से भी कुछ जमीनें थी जिससे अच्छी खासी महसूलात, कुछ कुएं थे, कुछ और इस तरह की प्रॉपर्टीज थी, खैबर की जगह पर कुछ जमीन थी, उस जमीन से जो भी आमदनी आ रही थी उसे अल्लाह के रसूल ने अहले बैत रसूल से मखसूस किया था और कहा था कि खैबर की जमीन से, जंग खैबर के बाद जो जो मिली है उस जमीन से जो आमदनी आएगी वो मेरे अहले बैत को मिलेगी। मदीने के अतराफ में लोगों ने वक्फ किया था सदकात के तौर पर, बानकिया की जमीन मशहूर है जो बड़ी जरखेज जमीन थी, जिसको वक्फ किया था कमजोरों और महरूमों और गरीबों के लिए, लेकिन उसका कस्टोडियन शरीय तौर पर, उसका मुतवल्ली, उसका जो है सरपरस्ती मौलाए कायनात के हाथ में दी थी। और फदक की जमीन ये सारा छीना गया, इस सबको छीन लिया। इब्ने अबिल हदीद मोतजली अहले सुन्नत अजीम आलिम शरह नाजुल बलागा लिखते हुए लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल की रहलत को सिर्फ 10 दिन गुजरे थे कि फदक की जमीन पर कब्जा किया गया। अल्लाह अकबर। बाज चीजें ऐसी हैं कि इंसान बहुत ज्यादा डिटेल में खोल के बयान नहीं कर सकता, लेकिन अब हालात वो नहीं रही हैं, सोशल मीडिया का भी दौर है, हकायक को बगैर किसी तंज व मिजाह और एहानत आमेज तोहिन आमेज अंदाज अख्तियार किए हकायक को बयान होना भी जरूरी है। सवाल ये है कि घर पर कब हमला हुआ और इस हमले का मकसद क्या था? ये आम तासुर जो मौजूद है मसाइब की वजह से या इस वाकये को इतनी डिटेल में क्योंकि हम बयान नहीं कर पाते बहुत सी सोसाइटीज के अंदर, उस वजह से तो एक कंफ्यूजन या एक परसेप्शन या एक इंफॉर्मेशन के तौर पर जो है ये डिस इंफॉर्मेशन लोगों के तक पहुंची हुई है, आम लोगों के पास, कि जिसमें ये एक तासुर बन गया है कि जो घर पर हमला है वो फौरन बाद हुआ और फदक को बाद में जो है गसब किया गया, जबकि वाकया तारीखी तौर पर ऐसा नहीं है। फदक को गसब का जो वाकया है, जैसे इब्ने अब्दुल हदीद ने भी कहा, 10 दिन के अंदर ये वाकयात हुए हैं, और घर के ऊपर जो हमले का मसला है वो तकरीबन 50 दिन के बाद, अल्लाह के रसूल की रहलत के 50 दिन के बाद ये वाकया सामने आया है, जब दूसरी बार मौला अली अलैहिस्सलाम से जबरी बेअत लेने की कोशिश की गई है। पहली बार जो कोशिश हुई थी तो उसमें असहाब धरने में मौजूद थे, और फिर जनाब सैयदा ने, हमारे पास जो रिवायात थे उसमें धमकी दी कि तुम लोग वापस चले जाओ, बेखुदा अगर नहीं जाते हो। अल्लाह अकबर, कायनात की इन हजीम हस्तियों के ऊपर कितने सख्त दिन गुजरे हैं कि इस लेवल तक की धमकी देनी पड़ रही है कि कहती है खुदा की कसम अगर तुम लोग नहीं चले जाते हो ना मेरे घर से, तो मैं अंदर जाऊंगी, सर के बाल खोलूंगी और बदुआ करूंगी। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद चले जाते हैं, क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं उसे मालूम है कि अगर सैयदा ने बदुआ की तो इसका मतलब क्या है। लश्कर है उसामा की भी वापसी हो जाती है इस दौरान में, घर में हमले से पहले का वाकया है, लश्कर उसामा की वापसी होती है। लश्कर उसामा में मौजूद बहुत से लोग नई खिलाफत के ऊपर एतराजात करते हैं कि कैसे आपने ये खलीफा चुन लिया है, कैसे जो है आपने ये फैसले कर लिए हैं। बाज आवाजें उठती हैं कि आपने कैसे जुरत की, जबकि हुजूर पाक ने डिक्लेयर किया है मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में, कुरान मजीद की आयात बयान की है, तो आप अपनी तरफ से कैसे खलीफा चुन सकते हैं। लेकिन हुकूमत तब तक पावर में है, ताकत है, हुकूमती मशीनरी है, खरीदा गया है, ईमान की खरीदो फरोख्त हो चुकी है, लिहाजा जो है इन आवाजों को दबा दिया जाता है। इनमें से बाज हैं जो खामोशी अख्तियार करते हैं सूरत हाल को देखकर, लेकिन अंदर से मोतरिज हैं। इस वाकये के बाद फिर से हुकूमत समझती है कि जब तक हजरत अली अलैहिस्सलाम बेअत नहीं करते हमारी, तो हमारी जो शरीई पोजीशन है वो हमेशा बहुत से लोगों के सामने मशकूक हालत में रहेगी कि जब तक अली जैसी हस्ती हमारे हाथ बेयत नहीं करते। इसलिए पूरा जोर लगाया जाता है कि मौलाए कायनात की बेयत का मतलब रसूलजादी की बेयत, रसूलजादी की बेयत का मतलब हसनैन अलैहिस्सलाम की बेयत, सईद शबाब अहले जन्ना की बेयत, अल हसन वल हुसैन इमामा निकामा औ का अदा की बेयत। कोई छोटी सी शरी पोजीशन नहीं है ये, इसलिए सारा फोकस होता है जनाब, इसलिए इंतहा तक चले जाते हैं, बहुत सी चीजों को बावजूद जानने के इंतहा तक चले जाते हैं। मुख्तसर करता हूं, आपके दरवाजे पर फिर आ जाते हैं, और जो उस वक्त का चीफ जस्टिस बना हुआ है, जो बाद में दूसरा खलीफा बनने जा रहा है, वो साथ में मौजूद है, ताकि लोग कहें शायद ये एक बहुत ही करीब किस्म का तजिया है, क्योंकि तजिया फैक्ट के ऊपर होता है, तजिया इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है, और एक तजियाकार इसी तरह तजिया करता है। तो हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन है, जो तारीखी हकायक है, उससे मालूम होता है कि इसकी आमद की वजह एक ये हो सकती है कि पहली दफा ये नहीं आया था, दूसरे लोग कुनफुस के क्यादत में, वो दूसरे लोग थे, तो वो लोग जनाब सईदा की धमकी की वजह से और जनाब सईदा की बददुआ के कहने की वजह से वापस चले गए थे, इसलिए ये खुद आ जाते हैं, क्योंकि इनके मिजाज के बारे में सबको पता है कि एक सख्तगीर मिजाज के इंसान हैं। इनकी सोच इंतहाई सख्ती पाई जाती है। ओहद के शहदा के ऊपर जब खवातीन जोर से गिरिया करने लगी अपने अजीजों को लेकर, तो ये शख्स हाथ में लाठी लेकर चले गए और एक एक खातून के सर को पीटने लगे और कहा कि वो शहीद हो चुके हैं, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने आकर मना किया कि ऐ फलां, तू क्या कर रहा है, ये नेचुरल और तबीयी है, शहीदों पर न रोए तो क्या करें। और जनाब सईदे कायनात के बारे में मिलता है कि अल्लाह के रसूल की वफात के बाद आप उहद के शहदा की कब्रों में जाती थी, फातिहा पढ़ती थी उनके लिए, और अल्लाह के रसूल के लिए जब गिरिया करती थी तो उन शहीदों और उनकी वफा के बारे में भी तस्किरा करती थी। ये शख्स सख्त मिजाजी में मशहूर था, लिहाजा शायद ये इसीलिए आया था। दरवाजे में पहुंचते हैं, आपने बारहा मसाइब में ये सुना है, क्या लकड़ियां लाने की बात कही तारीखी तौर पर ऑथेंटिक है? जी हाँ, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तारीख इस बात की गवाही देती है कि जिस दरवाजे पर फरिश्ते आते हुए इजाजत मांगते थे, जिस दरवाजे पर और जिस घर पर वही का नुजूल होता था, जहां अहले किसा रहते थे, जहां सैयदतुन निसा रहती थी, जहां हसनैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल रहते थे, जहां मौलल मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जैसी हस्ती रहती थी, उस बेत वही और वही के घराने के दरवाजे पर आए और कहा कि दरवाजा खोलो, या अली से कहो बाहर आ जाए, बेयत के लिए उसे जाना ही होगा, बेयत के लिए उसे आना होगा, बगैर बेयत किए हुए हम छोड़ेंगे नहीं। सैयदे कायनात फरमाती है, नहीं, तुम जाओ हमें अपने हाल पे छोड़ो, तुम जाओ अपने रास्ते नापो और हमें अपने हाल पे छोड़ दो। देखें आप यहां पर मौलाए कायनात क्यों फेस नहीं कर रहे, क्योंकि जनाब सैयदा जानती हैं कि वक्त वो नहीं रहा, हमने एक एक के दरवाजे खटखटाए, आज इमाम इमामत की दिफा करने के लिए मुझे आगे आना होगा, आज मैं शोहर के दिफा के लिए नहीं, वो बात का मसला है, अपने इमाम वक्त के दिफा के लिए मुझे फ्रंट लाइन पे आना होगा। लिहाजा सैयदे कायनात जब भी दस्तक होती है, सैयदे कायनात सामना करती हैं, दरवाजे के पीछे आती हैं, आवाज देती हैं और पूछती हैं कि क्या मसला है। जब दो तीन दफा ये दस्तक हुई तो उसके बाद जो है जनाब धमकी दी गई कि अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो फिर हम दरवाजे को आग लगा देंगे। उस वक्त तारीख कहती है, कालत फातिमा यबन फलान अजेत लितहरिक दारिना फअजाबहु ना। अल्लाहु अकबर। फरमाती हैं, ऐ फलान, क्या तुम यहां पर आए हो इसलिए कि तुम हमारे घर को आग लगाना चाहते हो? आगे से दरवाजे के पीछे से जवाब आई कि हाँ, हम आग लगा देंगे अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। बीबी की शहादत के 40 साल बाद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से जब मुगीरा, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम यानी मुगीरा ने देखा कि बड़े मुगीरा को देखा जनाब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने कि मुगीरा वहां पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये मुगीरा उन आग लगाने वाले उन जो है दहशतगर्दों की टीम में से एक टीम का एक मेंबर था। गमजदा आवाज में इमाम हसन मुश्तबा 40 साल के बाद एक जुमला कहते हैं जो उस वक्त दरवाजे जहरा पर क्या हुआ और रसूल जादी के साथ क्या हुआ, वो ये जुमला जो है जाहिर करता है। फरमाता है, अंतल्लदी ज़रबता फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह, कह रहा तुम वही शख्स हो ना जिसने रसूल की बेटी रसूल जादी को जिसने मारा था, वसल्लमा हत्ता अदमैतहा, यहां तक कि जनाब सैयदा उसी जरब की वजह से, उसी दर दीवार की वजह से, उसी ताजियाने की वजह से इस दुनिया से चले गई। ये तुम होना जिसने रसूल जादी को मारा था कि उसी वजह से इस दुनिया से चली गई। अवालिय शेख सदूक में, शेख सदूक ने नकल फरमाया है कि मौला अली अलैहि सलाम फरमाते थे कि एक दिन में जनाब फातिमा जहरा और हसन हुसैन अलैहि सलाम रसूलुल्लाह के हुजूर बैठे थे, यानी हम पूरी फैमिली और खानवादा अल्लाह के रसूल के सामने बैठे हुए थे कि अल्लाह के रसूल ने हमारी तरफ देखा और उसके बाद रोने लगे, गिरिया करने लगे। मैं परेशान हुआ और मैंने कहा, या रसूल अल्लाह क्यों गिरिया फरमा रहे, हम तो खैरियत से आपके सामने मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे ये गिरिया अली इसलिए है कि आपके सर पर जो जरबत लगेगी उसका सोच कर मुझे रोना आया। फिर फरमाने लगे, ए अली, मेरी लख्त जिगर फातिमा के ऊपर जो जरबत लगने वाली है उसे देख सोच कर भी जो है मुझे रोना आया। उसके बाद फरमाया, ए अली, खुदा ने फरमाया है कि तुम्हारा मुहिब मोमिन है और तुम्हारा मुखालिफ और तुम्हारा मुआनिद मुनाफिक होगा। एक और रावी है अबान, जो सलेम से नकल करते हुए कहता है कि शहादत के बाद, साहबी कहता है कि शहादत के बाद मैंने मौला से मुलाकात की और मुलाकात करके मैंने पूछा कि उस दिन दरवाजे पर क्या हुआ था। फरमाया कि जिस वक्त मुझे जबरी ले जाने की कोशिश होने लगी तो फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे और उनके दरमियान आ गई, बीबी मेरे और उनके दरमियान आ गई, वो मुझ पर हमलावर थे,
मेरे और उनके दरमियान आ गई और उनको रोकने लगी। लेकिन उस वक्त एक बलून जो कुनफुस के नाम से मशहूर था, उसके हाथ में मौजूद एक ताजियाना था, उसने उस ताजियाने से इतने जोर से मारा कि कायनात की सैयदा जमीन पर गिरी। बाज दीगर रिवायात में हमारे उलमा और मुज्तहिदीन पढ़ते हैं, न सिर्फ ताजियाना मारा बल्कि हाथ से ऐसी गुस्ताखी की सैयदा धड़ाम के साथ जमीन पर आकर गिर गई। कि इसीलिए उलमा कहते हैं कि जब मौलाए कायनात जनाब सईदा को गुसल दे रहे थे तो अली जैसे मजबूत शुजा बहादुर इंसान और शख्सियत और हस्ती गुसल देते देते अचानक अचानक मगसल से अली के जोर से पुकार और चीख की आवाज निकली, या जहरा या बिनते रसूलल्लाह की फरियाद की। अहले बैत जो है दौड़ के दरवाजे पे गए और फरमाया कि मौला क्या हुआ, सब खैर है। मौला ने उस वक्त नहीं बताया, लेकिन बाद में बताया कि जब सैयदा के जसद ताहिर व अतहर पर ताजियाने के निशानों को देखा, मौला से रहा नहीं गया, शिकस्ता पहलू को जब देखा तो मौला से रहा नहीं गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين والنعر للعاصين إن شاء الله تعالى أجل جدو مجالس ہیں